नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से भारत की वैश्विक भागीदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आधार एकीकृत भुगतान प्रणाली UPI दुनिया की सबसे बड़ी तत्काल भुगतान मंच के रूप में उभरी। अमरीका और वेनेजुएला के बीच सीधी वाणिज्यिक उड़ानें 7 साल बाद फिर शुरू। दुनिया भर में श्रमिकों के योगदान को सम्मान देने के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जा रहा है। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 4 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों के साथ प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देकर भारत की वैश्विक भागीदारी को मजबूत करने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने विदेश मंत्रालय के 11वें मिशन प्रमुख सम्मेलन में अपने विचार और सुझाव साझा किए तथा 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत की कूटनीतिक गतिविधियों पर मार्गदर्शन प्रदान किया।
इस वर्ष के 11वें मिशन प्रमुख सम्मेलन का विषय था 2047 के लिए भारतीय कूटनीति में सुधार। यह सम्मेलन 28 से 30 अप्रैल तक आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भविष्य के लिए तैयार कूटनीति, व्यापार, प्रौद्योगिकी और पर्यटन को बढ़ावा देने और भारत की गाथा को व्यापक बनाने पर प्रस्तुतियां भी दी गईं। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि अस्थिर और अशांत विश्व में भारतीय कूटनीति राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने और राष्ट्रीय लक्ष्य को सुरक्षित करने के लिए तत्पर है। 3 दिवसीय सम्मेलन के दौरान मिशन प्रमुखों ने योग सत्र, विचार मंथन सत्र, विभिन्न भू राजनीतिक घटनाक्रमों, भारत की गाथा और भविष्य के लिए तैयार कूटनीति पर विषयगत चर्चाओं में भाग लिया। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
एकीकृत भुगतान प्रणाली UPI दुनिया के सबसे बड़े तत्काल भुगतान मंच के रूप में उभरी है। ये भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आधार है। इसके शुभारंभ के 1 दशक बाद UPI वैश्विक तत्काल भुगतान लेनदेन के लगभग आधे हिस्से को संचालित करता है। इसकी शुरुआत 11 अप्रैल 2016 को हुई थी। ये प्रणाली वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती है, निर्बाध व्यापार को सक्षम बनाती है और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में वैश्विक मानक स्थापित करती है। एक रिपोर्ट।
एकीकृत भुगतान प्रणाली UPI के शुरू के पहले महीने में केवल 373 लेनदेन हुए थे। UPI लेनदेन वित्त वर्ष 2016-17 में 7000 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 314 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसमें लगभग 4000 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। UPI से वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 66 करोड़ लेन देन किए जा रहे हैं। इनका दैनिक मूल्य लगभग 86000 करोड़ रुपए है। UPI ने इस वर्ष मार्च में 2264 करोड़ रुपए के लेन देन के साथ अब तक का उच्चतम स्तर हासिल किया है। UPI को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने लेन देन की मात्रा के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी वास्तविक समय की भुगतान प्रणाली के रूप में मान्यता दी है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
अमेरिका ने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध विराम के अंतर्गत संघर्ष प्रभावी रूप से समाप्त हो गया है। इस स्थिति से उसे संसद की मंजूरी लेने से बचने में सहायता मिल सकती है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने संसद के ऊपरी सदन सीनेट के सदस्यों को बताया कि युद्ध विराम ने संघर्ष को विराम दिया है। एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने कहा कि 28 फरवरी को शुरू हुआ टकराव समाप्त हो गया है। 7 अप्रैल को हुए युद्ध विराम के बाद से कोई गोलीबारी नहीं हुई है। अमेरिका में वर्ष 1973 के कानून के अनुसार 60 दिन की सैन्य कार्रवाई के बाद संसद की अनुमति अनिवार्य है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के विरुद्ध कार्रवाई से ईरान की सैन्य क्षमता बहुत हद तक कमजोर हो गई है और वर्तमान अशांति के दौरान कथित सामूहिक हत्या पर रोक लगी है। राष्ट्रपति कार्यालय के कार्यक्रम में श्री ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करके ईरान में 8 महिलाओं की फांसी को रोका। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधों और नाकेबंदी के कारण ईरान की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है। उधर ईरान के अधिकारियों ने अमरीकी कार्रवाई को खारिज कर दिया है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगैर कलिफबाफ ने कहा है कि ईरान फारस की खाड़ी को सुरक्षित करेगा और होर्मूज जलडबरू मध्य पर नियंत्रण सहित अमरीकी हस्तक्षेप का विरोध करेगा। अमरीका और वेनेजुएला के बीच 7 वर्ष के अंतराल के बाद सीधी वाणिज्यिक उड़ानें फिर शुरू हो गई हैं। ये दोनों देशों के बीच विमानन संबंधों की महत्वपूर्ण बहाली का संकेत है। अमरीकी एयरलाइंस का एक विमान कल मियामी से कराकस पहुंचा। 2019 में अमरीका ने बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा चिंताओं के बीच वेनेजुएला के लिए यात्री और मालवाहक उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया था। अमरीकी अधिकारियों ने कहा है कि विमानन सुरक्षा स्थितियों में सुधार के बाद आर्थिक और लोगों के बीच आपसी संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारत ने जमैका में अपनी प्रमुख आरोग्य मैत्री पोर्टेबल स्वास्थ्य सेवा परियोजना लागू की है। इससे भारत कैरिबियाई संबंध और मजबूत होंगे। एक रिपोर्ट।
ये मानवीय सहयोग की कूटनीति के क्षेत्र में विकासशील देशों के बीच सहयोग का एक नया और प्रभावी उदाहरण है, जो भारत कैरेबियाई समुदाय के व्यापक ढांचे के अंतर्गत आता है। ये तैनाती साझेदार देशों को त्वरित और प्रौद्योगिकी आधारित चिकित्सा सहायता प्रदान करने में भारत सरकार के बढ़ते प्रभाव को दर्शाती है। ये पहल राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा निर्देशित और विदेश मंत्रालय के साथ घनिष्ठ समन्वय में लागू की गई है। ये रणनीतिक कदम कैरेबियाई देशों तक भारत की व्यापक पहुंच के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। इसमें स्वास्थ्य, आपदा राहत और क्षमता निर्माण प्रमुख स्तंभ हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
आज विश्व भर के श्रमिकों को सम्मानित करने के लिए श्रम दिवस मनाया जा रहा है। इसे मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन विश्व भर में आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की प्राप्ति में श्रमिकों के बलिदान को याद किया जाता है। 1886 में अमेरिका में श्रमिकों ने प्रतिदिन 8 घंटे काम करने की मांग को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन किया। हे मार्केट कांड के नाम से प्रसिद्ध इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस की शुरुआत को चिन्हित किया। आज बुद्ध पूर्णिमा है। आज के दिन भगवान गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण हुआ था। उन्हें बिहार के बोधगया में महाबोधि वृक्ष के तले ज्ञान प्राप्ति हुई थी।
प्रदर्शनी में विभिन्न धर्मों के बीच संवाद, हिमालय बौद्ध धर्म पर सेमिनार, योग और ध्यान सत्र, विश्व शांति के लिए हजारों बौद्ध भिक्षुओं के साथ भव्य प्रार्थना सभा, थांगका चित्रकला पर कार्यशाला, लकड़ी की नक्काशी, पांडुलिपियों का संरक्षण, मिट्टी के ग्रंथों का प्रदर्शन और विभिन्न राज्यों और देशों के सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल हैं। लेह लद्दाख से यांगचान डोलमा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
बुद्ध पूर्णिमा का पर्व भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, तिब्बत, कोरिया, लाओ, वियतनाम, मंगोलिया, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और श्रीलंका में विशेष रूप से मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और गृह मंत्री अमित शाह ने बुद्ध पूर्णिमा पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। म्यांमार की पूर्व नेता आंग सान सू की को हिरासत से निकालकर नजरबंद कर दिया गया है। सरकारी टेलीविजन ने इसकी घोषणा की है। सरकार की सैन्य सूचना टीम ने पत्रकारों को संदेश भेजकर भी ये सूचना दी। सान सू की 1 फरवरी 2021 से हिरासत में हैं, जब सेना ने उनकी चुनी हुई सरकार से सत्ता छीन ली थी। नेपाल में सिंधुली और रामेछाप जिलों को जोड़ने वाले नेपाल थोक स्थित 70 मीटर लंबे उच्च क्षमता वाले मॉड्यूलर पुल का कल भारत की वाणिज्यिक दूत गीतांजलि ब्रेंडन और नेपाल सरकार के सड़क विभाग के महानिदेशक डॉ. विजय जैशी ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। आईपीएल क्रिकेट में कल रात अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 4 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से भारत की वैश्विक भागीदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आधार एकीकृत भुगतान प्रणाली UPI दुनिया के सबसे बड़े तत्काल भुगतान के रूप में उभरी। अमरीका और वेनेजुएला के बीच सीधी वाणिज्यिक उड़ानें 7 साल बाद फिर शुरू। दुनिया भर में श्रमिकों के योगदान को सम्मान देने के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जा रहा है। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।